प्रवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। थर्ड कैंटो 15 चैप्टर टेक्स्ट नंबर 13। सत्ताये कदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः ययोर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतं त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः ययोर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतं त एकदा भगवतो। After thus traveling all over the universes, they also entered into the spiritual sky. For they were freed from all material contamination. In the spiritual sky, there are spiritual planets known as Vaikunthas, which are the residence of the Supreme Personality of Godhead and His pure devotees, and are worshipped by the residents of all the material planets. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada ki, the material world is full of cares and anxieties. In any one of the planets, beginning from the highest down to the lowest, Patala, every living creature must be full of cares and anxieties. Because in the material planets, one cannot live eternally. The living entities, however, are actually eternal. They want an eternal home, an eternal residence. But because of accepting a temporal abode in the material world, they are naturally full of anxiety. In the spiritual sky, the planets are called Vaikuntha because the residents of these planets are free from all anxieties. For them, there is no question of birth, death, old age and diseases, and therefore they are not anxious. On the other hand, the residents of the material planets are always afraid of birth, death, disease and old age, and therefore they are full of anxieties.
Om Ajnana Timirandhasya Jnana Krishna.
Hum aap sabko swagat karte hain Airavar ke karyakram mein. इस तात्पर्य में ये चैप्टर है डिस्क्रिप्शन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के धाम के बारे में वर्णन है भागवत के तीसरे स्कंद में 15वें अध्याय में। तो प्रभुपाद इधर बता रहे हैं कि ये भौतिक दुनिया में हमेशा ये लोगों के अंदर चिंता रहता है, केयर्स एंड एंग्जाइटीज, दो चीज बताते हैं प्रभुपाद जी, सुरक्षा और चिंता जो रखता है लोगों में ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक। लेकिन जो जीव इस भौतिक दुनिया से मुक्त होकर भगवत धाम में चले जाते हैं, वो वैकुंठ में रहते हैं, उधर किसी भी तरह का उनको चिंता नहीं है, इस तरह बताते हैं। क्योंकि उधर जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि दुख उधर नहीं है। कुछ समय के पहले हम किसी दूसरे प्रदेश में हम गए थे, उधर हमने सुंदर मोरों को देखा। हम मोर बहुत सुंदर अपने पंखों को पंखों के द्वारा ऐसे नाच रहे थे, बहुत सुंदर। हमने बोला देखो कितना सुंदर है मोर। तो उधर के भक्त लोगों ने बोला कि जिधर मोर रहते हैं उधर सर्प भी रहते हैं। तो तुरंत हमें चिंता आ गया, उधर तुरंत हम डर गए, है ना। तो इस दुनिया में हम देख सकते हैं खुशी के साथ साथ दुख भी रहता है इस दुनिया में। मोर तो सर्प के पीछे पड़ा है, लेकिन सर्प एक मेंढक के पीछे पड़ा है इस दुनिया में। इस तरह हर एक जीव इस दुनिया में दुख के बीच में, सुख दुख के बीच में रहता है इस दुनिया में। ऐसे इस तरह प्रभुपाद जी बताते हैं, ये भौतिक दुनिया का मतलब है इस तरह के चिंता है। प्रभुपाद जी जब तेहरान में गए थे, उधर एक अली, मोहम्मद अली नाम के एक अली को प्रचार कर रहे थे, बहुत बुद्धिमान युवक था वो। तो अनेक प्रश्न पूछ रहा था वो। तो उसने प्रभुपाद जी को पूछा कि देखिए परम भगवान अगर कृपालु हैं तो उनको जरूर हमें बचाना चाहिए दुखों से, हमें ऊपर उठाना चाहिए सब तरह के दुखों से, क्लेशों से, क्यों ऐसे हमारे परमपिता में छोड़ दिया है। तो प्रभुपाद जी ने बोला देखिए मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, हर एक जीव के अंदर जो प्रश्न होते हैं वो एक समान ही होते हैं, क्योंकि जीव सब गुणात्मक रूप से देखा जाए तो एक ही है। बाहरी दृष्टि से टोपी पहने, नहीं तो दाढ़ी रखे, नहीं तो क्रॉस पहने, जो भी हो। तो प्रभुपाद ने बोला देखो अगर तुम्हें भगवान को देखना है, जानना है, तो तुम्हें अर्जुन के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा तुम्हें। उन्होंने बोला देखो भगवान इस दुनिया में आते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, जब धर्म का ग्लानि होता है भगवान आते हैं इस दुनिया में। और किस लिए आते हैं? धर्म संस्थापन करने के लिए। देखिए भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया, उसके बाद प्रहलाद को स्थापन किया, रावण को मार दिया, उसके बाद विभीषण को स्थापन किया, है ना। ऐसे आप देखेंगे हमेशा भगवान राक्षसों को, असुरों को मारते हैं और अपने भक्तों को स्थापन करते हैं एक स्थिति पर, ताकि वो दुनिया की भलाई करें, सब लोगों को भगवान से जोड़े, है ना। ऐसे तो धर्म संस्थापन के लिए भगवान आते हैं इस दुनिया में, लेकिन साथ साथ भगवान ये दिव्य ज्ञान भी देते हैं। जैसे अर्जुन ने भगवद गीता के शुरुआत में भगवान की शरण गया, उन्होंने शिष्यस्ते हम शादी माम तो आम प्रपन्न, हे भगवान मैं आपके शिष्य बन गया, मैं भी आप मेरे मित्र नहीं हो लेकिन आप मेरे गुरु हो। तो भगवान ने बोला उनको तुम व्यासदेव के पास जाओ, इतने अनेक अनेक गुरु हैं उनके पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो, मैं तो तुम्हारे मित्र हूँ। तो अर्जुन ने बोला नहीं आप मित्र नहीं हो, आप मेरे गुरु हो, क्योंकि मित्रों के बीच में दिव्य ज्ञान की आदान प्रदान होना कठिन है, क्योंकि हम मित्रों को बहुत सहजता से लेते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि भगवान आप मेरे गुरु हो, आप मुझे दिव्य ज्ञान दो। और भगवान ने दिव्य ज्ञान दी भगवद गीता में। उसके बाद अंतिम में हम देखते हैं करिष्ये वचनम तव, ऐसे बोलकर अर्जुन शरण गए भगवान की, आपके वचनों को मैं निभाऊंगा, पूर्ति करूंगा। तो प्रभुपाद ने ये कोट किया भगवद गीता से ये अली को, उन्होंने बोला कि देखो अर्जुन के भावना चाहिए हमारे अंदर, भगवान की शरण जाना दिव्य ज्ञान सुनने के लिए, और सुनने के बाद उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करना। तो प्रभुपाद ने उनको पूछा, लेकिन अली पूछ रहे थे कि देखिए इस दुनिया में दिव्य ज्ञान तो है ही, लेकिन हमारे अंदर उतना उत्सुकता उतना तीव्रता नहीं है, हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं ये दिव्य ज्ञान को स्वीकारने में, इसका कारण क्या है। तो प्रभुपाद जी बताया देखो इस दुनिया में कोई है खुश इस दुनिया में, ऐसे पूछा प्रभुपाद ने, कोई खुशी व्यक्ति है इस दुनिया में दिखाओ एक व्यक्ति। तो ये युवक सोच कर बताया उन्होंने, कोई खुश नहीं है स्वामी जी, ऐसे बोला उन्होंने। प्रभुपाद जी इतने खुश हो गए उसको सुनकर, जो व्यक्ति समझ गया कि इस दुनिया में खुश नहीं है वो बुद्धिमान है, अच्छा बोला प्रभुपाद जी ने, तो प्रभुपाद ने उनको पूछा तुम्हारे जो राजा है शाह क्या वो खुशी है, उसके बेटे बेटियां क्या वो खुशी है? तो उन्होंने पूछा देखो वो सोच रहा है कैसे अपने पदवी को पकड़ कर रखे, ऐसे वो सोच रहा है। तो बोला कि ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब जीव इस दुनिया में हमेशा किसी न किसी तरह के चिंता में रहते हैं। एक पक्षी है, पक्षी एक धान्य लेने के लिए आता है, लेकिन हमेशा इधर उधर देखता है, कोई आदमी खड़ा है उधर, मुझे गोली मारेगा, मर जाऊंगा मैं, इस तरह डरता है वो इस दुनिया में। तो बता रहे थे कि ये दिव्य ज्ञान का शुरुआत है, क्या है वो समझना कि ये दुनिया में कुछ नहीं है, ये दिव्य ज्ञान का आरंभ है, शुरुआत है। जब ये आदमी ये समझेगा तभी हम ऊपर उठ सकते हैं इसके ऊपर। दो तीन दिनों के पहले हमारे प्रिय भक्त शुद्धन ताई चंद्र प्रभु एक बाइक में जा रहे थे, पीछे से एक स्त्री गाड़ी कार चला रही थी यहाँ यल बोर्ड लगा कर, लेकिन इतना तेजी से चलाया ये तो सड़क के एक कोने में शांति से चला रहे थे गाड़ी, लेकिन पीछे से आकर उस स्त्री ने इतना जोर से मारा इनके बाइक के ऊपर, बाइक उड़ गया ऊपर, प्रभु जी भी इतने ऊपर उड़ गया और नीचे गिर पड़े। वो स्त्री बहुत डर गई, उसके पति उधर मिलिट्री में काम करने वाले हैं कोई, तुरंत उन्होंने फ़ोन किया और ये लोग आए और पुलिस आ गया। पुलिस लोग इनको उनके कपड़े देकर समझ गए कि हरे कृष्ण है, और तुरंत उनको अस्पताल लेके गए, KEM में एडमिट किया। तो बाद में मैंने मिला शुद्धन प्रभु से, उन्होंने बोला कि मुझे होश ही नहीं था, मुझे जब मैं बाइक के ऊपर उड़ा इसे पता नहीं मैं किधर गया, मैं पूरा बेहोश हो चुका मैं, और आंख जब खोला तभी पता चला मैं अस्पताल में हूँ, लोग लाए हैं इसे, भगवान ने बचा दिया उनको। वो स्त्री ने बोला कि मुझे विश्वास नहीं था कि आदमी जिंदा रहेगा, इतना बड़ा एक्सीडेंट था वो, लेकिन भगवान की नरसिंह देव की कृपा से, भगवान की कृपा से बच गए। प्रभु जी उनको कुछ फ्रैक्चर हुआ है, वे अस्पताल में एडमिट हैं। बहुत चरणागत भक्त हैं, दिन रात मंदिर में सेवा करते हैं इसे इधर, तो भगवान ने सुरक्षा की है उनकी। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, ये दुनिया ऐसा दुनिया है, किस व्यक्ति को किस क्षण क्या होगा किसी को पता नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि हमारा शरीर जो है इतना व्हाट इज फ्रजाइल ताजुक नाजुक इतना नाजुक है शरीर, कब क्या होगा कोई पता नहीं कर सकता है ऐसे। तो जब हम इस तरह की कुछ दुर्घटनाओं के बारे में सुनते हैं तभी हमें थोड़ा डर होता है मन में, तभी कभी कभी लोग भगवान के बारे में सोचते हैं उस समय ऐसे। तो लेकिन प्रभु जी भक्त होने के कारण अस्पताल में जब हम गए मिलने के लिए तो चेहरे में थोड़ा भी चिंता नहीं था उनके, तो ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे वो। तो मैं जो प्रश्न पूछ रहा था बोले कि पता नहीं प्रभु जी, मुझे पता नहीं भगवान ने कैसे बचाया, मुझे भगवान ने बचाया। और तुरंत वो प्रश्न पूछने लगे नित्य सेवा फेस्टिवल के बारे में, तो नित्य सेवा फेस्टिवल आने वाला है, गोपालकृष्ण महाराज आने वाले हैं, आप लोग क्या आयोजन करेंगे, मैं तो मेरा फ्रैक्चर हो गया, मैं आ नहीं पाऊंगा, इतना उनको भगवान के बारे में चिंता था उनका। तो इसे मैं समझ सका कि कितना उनके मन डूबा हुआ है भगवान की सेवा भावना में, हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है तो तुरंत वो दुनिया के इतना चिंताओं में उसका मन डूब जाता है इसे। तो ये प्रभुपाद जी की जो तात्पर्य इधर बताते हैं, ये बार बार प्रभुपाद जी अनेक प्रवचनों में अपने कॉन्वर्सेशंस में प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं इसके बारे में कि ये दुनिया में चिंता है। इसलिए भगवान 8वें अध्याय में भगवद गीता के बहुत डिटेल में भगवान बताते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन इधर ही नहीं लेकिन स्वर्गलोक में भी नरकलोक में भी कहीं भी सुख नहीं है इस दुनिया में, अगर सुख भी प्राप्त होगा तो बहुत क्षणभंगुर है वो, बहुत समय टिकेगा नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति एक क्षणभंगुर सुख के पीछे वो भागेगा नहीं, ऐसे भगवान बताते हैं। ये भी अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये अध्याय के पहले देवता लोग एक बार चिंतामग्न हो गए, कारण क्या है, क्योंकि अचानक उन्होंने बहुत काला धुआं देखा आसमान में, किधर से इतना गहरा काला धुआं आ गया है, ऐसे देखकर वो डर गए, वो हाँ भाग गए ब्रह्मा जी के पास, जाकर प्रार्थना की उन्होंने। तो ब्रह्मा ने बोला, अरे देवताओं चिंता मत करो, भगवान है और भगवान देख रहे हैं सब कुछ चीज़, भगवान रक्षा करेंगे हमारी, पहले ये चिंता को छोड़ दो। और उन्होंने बताया उनको कि ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो है वो दोनों अभी उनका जन्म होने वाला है, अभी योनि में है, अभी तक जन्म हुआ नहीं, वो जन्म होने के पहले इतना वो मचा रहे हैं, इस तरह के चिंताओं को दूसरों को चिंता दे रहे हैं, ऐसे हैं उनके कारण इतना धुआं निकल गया, ऐसे बता रहे थे ब्रह्मा जी। तो देवता लोग पूछने लगे कि ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जन्म के पहले इतना कर रहे हैं, जन्म के बाद क्या क्या हमें चिंता देने वाले हैं पता नहीं, कैसे हम बचे इनसे। तभी ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो, तभी दो चीज बताया उन्होंने, एक चीज है हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कैसे आए इस दुनिया में, वो बताया उन्होंने, जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनकर आए, वो बताया उन्होंने। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस दुनिया में चिंता ही चिंता है, अगर तुम हमेशा चिंता रहित रहना चाहते हो तो तुम्हें भगवत धाम जाना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे। तो प्रभुपाद जी भी बताते हैं, एक प्रवचन में अमेरिका में जब थे प्रभुपाद जी, उन्होंने बताया कि ये दुनिया में सब मिथ्या है, भौतिक चीजें, हमारे कार मिथ्या है, बंगलो मिथ्या है, माँ बाप बच्चे पति पत्नी रिश्तेदार, ये सब मिथ्या रूपी शरीर है, इस तरह होता है। और प्रभुपाद ने बताया कि इस तरह के हम मिथ्या के दुनिया में हम जब रहते हैं तभी हमें बहुत डर होता है, क्योंकि जब हम सोते समय जब स्वप्न आता है, कुछ दुस्वप्न आता है तो हम डरते हैं ना, कोई बाघ नहीं तो कोई कुत्ता हमें हमारे पीछे पड़ा है तो हम बहुत डरते हैं, हमारे पीछे पीछे भागता है इसे। लेकिन जब हम जाग जाते हैं वो स्वप्न से, तो हम देखते हैं कि पसीना छूट गया शरीर से, लेकिन कुछ कुत्ता भी नहीं, बिल्ली भी नहीं, कुछ भी नहीं है, बाघ भी नहीं, हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह जब एक जीवात्मा जाग जाता है भगवान के दिव्य ज्ञान के को सुनकर, तभी इस दुनिया में रहते समय भी वो चिंता से मुक्त हो सकता है, ऐसा है। क्योंकि मैं आपको उदाहरण दिया सिद्धनाथ प्रभु का, वो भी दुनिया में रहते हैं और साधारण लोग भी दुनिया में रहते हैं, लेकिन जो भक्त लोग भगवान संबंधित दिव्य ज्ञान को सुनकर और पूर्ण श्रद्धा के साथ उसको अभ्यास करते हैं, वो चिंता से ऊपर उठ सकते हैं इस भक्त दुनिया की चिंता से। लेकिन जो लोग इस चिंताओं को अपने सर के ऊपर ले लेते हैं अपने आप उसको सुलझाने के लिए, वो लोग हमेशा बहुत डरेंगे सब अवस्थाओं में, ऐसे प्रभुपाद ने बताया। तो वो अली ने पूछा प्रभुपाद को, ठीक है स्वामी जी, मैं पूरा चिंता से मुक्त होना चाहता हूँ, कितना टाइम लगेगा मुझे भगवत धाम जाने के लिए, ऐसे पूछा उन्होंने। प्रभुपाद ने बोला, देखो ये फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल तीन स्तर पर बोला प्रभुपाद ने उनको, अगर इधर से मुझे लंदन जाना है तो 8 घंटा लगेगा, ऐसे बोला उन्होंने। लेकिन मन से लंदन जाना है तो कुछ ही क्षणों में हम स्वप्न कर सकते हैं, जा सकते हैं उधर। लेकिन आध्यात्मिक जीवन इतना सरल है, प्रभुपाद ने बोला, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीति मामेति, बोला कि तुम भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करो, तुरंत अगले क्षण तुम जा सकते हो भगवत धाम, ऐसे बोला, एक क्षण में तुम जा सकते हो, ऐसे शरीर छोड़ते ही अगले क्षण आत्मा भगवत धाम में रहता हो, ऐसे बताया उन्होंने। लेकिन बोला लेकिन देखो हम तो हट करते हैं, जैसे बच्चा हट करता है ऐसे हम भी हट करते हैं, शरण न जाते हैं, इसलिए भक्ति जब शुरू करते हैं एक बीज बोने के समान है, वो बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं उगता है, पानी सींचना है, वो पौधा होगा, उसके बाद फूल आएगा, उसके बाद फल आएगा, समय लगता है उसके लिए, इसलिए भक्ति में हमें ऐसे थोड़ा देर लगता है, ऐसे बताया उन्होंने। तो देखिए प्रभुपाद जी ऐसे गुरु हैं जो अपनी किताबों के द्वारा अपने वार्तालापों के द्वारा ये बातों को बहुत सरलता से समझाते हैं। अनेक लोग हैं जो आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं इस दुनिया में, अनेक लोग हैं जो जनसेवा में लगे हुए हैं, समाज सेवा में, अनेक लोगों को लगता है कि ये समाज सेवा जनसेवा ये बहुत यही जीवन का उच्च कोटि का लक्ष्य है, ऐसे। तो एक बहुत बुद्धिमान जैसे वैज्ञानिक लोग थियोलॉजियन लोग उन लोगों का एक मीटिंग हुआ प्रभुपाद के साथ। उसमें एक व्यक्ति पूछ रहा था कि आप तो हमेशा नाम जपो बोलते हो, हैं नहीं तो भगवद गीता पढ़ो भागवत पढ़ो, अरे आप लोग भगवान को पकड़कर इतना भगवान के पीछे पड़े हो, ये दुनिया के लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं करते, इतना बड़ा मंदिर बांधते हो, इतना भगवान का नाम लेते हो, गाते हो नाचते हो, लेकिन दुनिया के लोगों के लिए क्यों कुछ नहीं करते, लोगों को गरीब लोगों को खाना है खाना बांट भोजन बांटो हैं तो कपड़े दो है? लोगों को घर बांध कर दो, ऐसा कुछ करो है? कुछ भलाई करो लोगों को है? इस तरह भगवान की भक्ति करने से क्या फायदा, ऐसे उन्होंने पूछा। तो प्रभुपाद ने बोला देखो जो मानवता की ऊपर प्रेम करता है कोई व्यक्ति, वो प्रेम पूर्ण प्रेम नहीं है, वो अधूरा प्रेम है, ऐसे बोला उन्होंने। क्योंकि अनेक लोग मानवता के कल्याण के लिए जो काम करने वाले हैं ना, वो समाज के सुधार करने वाले समाज सेवक स्वयं सेवक वगैरह, लोग उनको भगवान के समान मानते हैं, बोलते हैं कि ऐसे ऐसे उनको महात्मा बोलते हैं लोग हैं, इतना उन्होंने समाज का सुधार किया है, लोगों की भलाई किया है, भोजन अरेंज किया है उनके लिए, पढ़ाई अरेंज किया है, कॉलेज कंस्ट्रक्ट किया है, अस्पताल बनाए हैं, ये सब बताते हैं लोग ऐसे। लेकिन बाबा ने बोला कि देखो मानवता की ऊपर प्रेम करने वाला व्यक्ति का प्रेम जो है वो अधूरा प्रेम है। कैसे, उन्होंने बोला देखो अमेरिका में इतने लोग समाज सेवा करते हैं करने वाले हैं, लेकिन वो लोग गोमांस खाते हैं वो लोग है? लेकिन एक गाय दो गाय नहीं करोड़ों गायों को काटते हैं बड़े बड़े मशीनों में है? कतलखानों में काटते हैं, क्या प्रेम है ये, ऐसे पूछा उन्होंने। मनुष्य को प्रेम करो और गाय को काटो, क्या प्रेम है ये अधूरा प्रेम है। लेकिन उन्होंने बोला देखो कृष्ण को जो प्रेम करता है वो ऐसा नहीं कि गाय को प्रेम करता है, क्योंकि कृष्ण के पास गाय है, सिर्फ गायों को प्रेम करता है, उनको काटता नहीं, ऐसा नहीं, वो एक चींटी को भी दुख नहीं पहुंचाएगा कृष्ण के भक्त। आपको मालूम है मृगारी पहले कितने जानवरों को दुख देता था पहले, लेकिन भक्त बनने के बाद क्या हुआ, वो एक चींटी के ऊपर भी पांव रखने के लिए वो हिचकिचाया हुआ, इसलिए अपने अंग वस्त्र को लेकर ऐसे चींटी को बाजू में किया, उसके बाद दंडवत प्रणाम किया मृगारी ने, क्योंकि कृष्ण के भक्त बनने के बाद इस तरह का हृदय का परिवर्तन आ गया। तो प्रभा ने बोला कि मृगारी का जो कृष्ण भक्ति जो है वो कृष्ण प्रेम वो पूर्ण प्रेम है, और मानवता का प्रेम अधूरा प्रेम है, इसलिए हम मंदिर बांध रहे हैं भगवान के नामों को वितरण करने के लिए, लोगों को भगवान के किताबों को बांटने के लिए, भगवान की कथा को लोगों को बताने के लिए। क्योंकि भागवत में ऐसे एक श्लोक है मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविदास्तापा नैतान् मद्गत चेतसाः। ये बहुत सुंदर श्लोक है, कपिल जी बताते हैं, इधर बताते हैं कि जो लोग मेरे बताते हैं मत आश्रय, आश्रय का मतलब है मेरे आश्रय लेते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की, मत आश्रय कथा मृष्टा, मेरे कथा सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, मेरे नाम जपते हैं दूसरों को जपाते हैं उनको सिखाते हैं, इसे ऐसे जो लोग करते हैं बताते हैं तपंती विविधास्तापा, उनके जीवन में भी दुख आता है लेकिन नया एतान मदगत चेतसा, क्योंकि मेरे भक्ति में डूबे हैं इसके कारण उनको वह दुख के रूप में महसूस नहीं होगा, वो दुख उनको दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसे बताते हैं ये श्लोक में। तो इस तरह हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि भक्तों के जीवन में दुख नहीं आता है, दुख तो सबके जीवन में आता है, लेकिन उनके अंदर ऐसे परिपक्वता आता है वो सब तरह के दुखों से वो ऊपर उठ सकते हैं। जैसे एक आदमी आया था अमेरिका में, वो देखा कि मंदिर में भक्त लोग बैठ कर जप कर रहे थे, वो देखा कि अरे वो एक भी मिनट बैठ नहीं सकता वो, तो प्रभुपाद जी बता रहे थे उसको देखो ये भक्त लोग 2 घंटा जपते हैं ये माला 16 माला एक ही मंत्र को जपते हैं, देखो इसके लिए भी शक्ति की जरूरत है ना 16 माला करने के लिए भी एक ही मंत्र को, क्योंकि इस दुनिया में मन इतना तेजी से घूमता है। तो इस तरह भक्त लोगों के अंदर टॉलरेंस आता है, ये सहना शक्ति आता है, वो सुन सुनकर धीरे 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 उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। ऐसे जैसे एक लेटरिन में अगर आप ओडो ने लड़कोगे वो सुगंध आ जाता है उधर अंदर, है ना। लेकिन ये दुनिया का ओडोनिल का सुगंध बहुत समय टिकता नहीं है, कुछ समय टिकता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, वापस क्या है दुर्गंध आता है उधर। लेकिन भगवान के नाम के बारे में बताया है छठे स्कंद में, जो भगवान का नाम जपता है वो नाम जब हृदय के अंदर पहुंचता है और हृदय में पहुंचता है वो शुद्धिकरण करता है, वो किसके समान है, वो ये ठंडी मौसम के कोहरा जो होता है वो सूर्य के सामने कैसे वो निकल जाता है, इस तरह एक व्यक्ति के हृदय के गंदगी मल निकल जाता है पूर्ण तरीके से, क्योंकि सूर्य के सामने कोहरा नहीं रह सकता है। अगर कोहरा है तो अभी तक सूर्य उदय नहीं हुआ है, अगर सूर्य का उदय हो गया तो कोहरा चला जाएगा वह अपने आप, इस तरह भागवत में बताया गया है, पूर्ण शुद्धि हो जाएगा। लेकिन हम अभी आधा शुद्ध हुए हैं और आधा गंदगी है, लेकिन जब हम शुद्ध भक्ति प्राप्त होगा तभी पूर्ण तरह से शुद्धिकरण हो जाएगा। तो ईश्वर प्रभा ने बताया कि लोग नहीं समझते हैं, इस दुनिया के समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं मानवता के ऊपर प्रेम चलाकर। कुछ कुछ लोग हैं जो जानवरों के ऊपर प्रेम दिखाते हैं। ये एक स्त्री थी अमेरिका में जो एक कुत्तों को बचाने वाली थी, वो ऐसे कुत्ते को बांध दिया था एक रस्सी में, उसने देखा कि देखो कुत्ते को इतने छोटे रस्सी में बांधा है, इसलिए कोर्ट में एक केस डाल दिया और वो आदमी को फाइन भरना पड़ा उसके लिए। लेकिन घर में जाकर वो गोमांस खा रही थी वो। इस तरह लोग जो हैं किसी जानवर के ऊपर प्रेम करते हैं, मनुष्य के ऊपर प्रेम करते हैं, चींटियों के ऊपर प्रेम करते हैं, अलग अलग प्राणियों के ऊपर। लेकिन पापा ने बोला देखो कृष्ण के ऊपर तुम प्रेम करो, सब जीवों के ऊपर प्रेम अपने आप आ जाएगा। ये मास्टर स्विच के समान है, जैसे कार में आपके पास एक चाबी रहता है, वो चाबी को प्रेस करो पूप ऐसे आवाज जाता है, सब खुल जाता है, सब दरवाजा है ना, एक ही चाबी में सब दरवाजा खुल जाता है ऑटोमेटिक, अलग अलग दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह भगवान की इट्स कॉल्ड वन स्ट्रोक मेथड, भगवान की भक्ति से सब जीवन के ऊपर हमें प्रेम और आदर और इस तरह उनकी सेवा करने की इच्छा हमें होगा। तो ये देवहूति तीसरे स्कंद में हम पढ़ते हैं कि वो बताती है भगवान को यही बात जो इस वर्ष में हम चर्चा कर रहे हैं कि द मेटीरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ केयर्स एंड एंग्जाइटीज। वो देवहूति बता रही है अपने पति को, उन्होंने पहले बताया कि मैंने आपसे मांग कर इतने तरह तरह के भोगों को भोगा, मैंने बहुत बड़ा एरियल मैंशन बनाया था इन्होंने कर्दमुनि ने, उसने सोचा कि हम दोनों इस दुनिया में इतना घूमा है, इतना आनंद भोगा है, लेकिन इसके बाद उसने बोला कि आप महान पुरुष हो क्योंकि आपने आध्यात्मिक जीवन को अपना कर आपने भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त किया है, लेकिन आपके निकटता में रहने के बावजूद भी मैं इतना बड़ी मूर्ख हूँ कि मैंने भक्ति आपसे स्वीकारा नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ इंद्रिय भोग स्वीकारा है। ऐसे बोलकर देवहूति रोने लगी। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं उधर हमारे गुरु जो हैं, गुरु हैं प्रभुपाद जी हैं, वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के पास आकर शिष्य जो होता है, देखिए गुरु को तुलना किया गया है एक पुरुष के साथ और शिष्य को तुलना किया है एक स्त्री के साथ। क्यों? एक पुरुष के अंदर वीर्य का शक्ति है वो स्त्री को एक बच्चा दे सकता है, इस तरह गुरु अपने शिष्य को कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। ऐसे या गुरु कैन इम्प्रेगनेट द सीड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द फर्टाइल हार्ट ऑफ द डिसिपल। फर्टाइल वर्ड से फर्टाइल उपजाऊ भूमि जो है उसमें अगर आप बीज बोओगे तो वो उग जाएगा और पेड़ आएगा, उसमें फल फूल वगैरह निकलेगा। इस तरह प्रभुपाद बता दें कि शिष्य जो है उसको गुरु से कृष्ण प्रेम मांगना चाहिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त होना चाहिए उसको, मुझे कृष्ण के प्रेम प्राप्त हो जाए है? ऐसे ऐसा नहीं कि जैसे इधर एक तात्पर्य प्रभा जी लिखते हैं, अनेक लोग दुर्गा माता के पास आते हैं और मांगते हैं मुझे अलग अलग तरह की सुविधा दे दो, ऐसे बताते हैं प्रभा जी उधर। और उस तात्पर्य बताते हैं, इधर एक तात्पर्य देखिए प्रभा जी क्या बताते हैं, रावण टुक अवे लक्ष्मी सीता जी टू हिज किंगडम एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी बाय द ग्रेस ऑफ लक्ष्मी हिज फैमिली एंड हिज किंगडम वर वैंक्विश्ड। Thus, Lakshmi in the house of Ravana is chanchala or unsteady. Men of Ravana's class want Lakshmi only without her husband, Narayan. Therefore, they become unsteady due to Lakshmi, Lakshmiji. Materialistic persons find fault on the part of Lakshmi. But in Vaikuntha, Lakshmi is fixed in the service of the Lord. In spite of her being the goddess of fortune, she cannot be happy without the grace of the Lord. Even the goddess of fortune needs the Lord's grace in order to be happy. Prabhupada batate hain idhar, Lakshmi ji bhi kush nahi hai jab wo Bhagwan se dur hai. Jaise Sita Mata ko Ramchandra ne bheja tha jungle mein, kya wo kush thi? Wo akele kush nahi rehti hai. Aise jaise Kolhapur mein Mahalakshmi hai, wo kush nahi hai kyunki tapasya kar rahi hai Bhagwan ko prapt karne ke liye. Is tarah Bilba Van mein bhi Lakshmi baithi hai haath jod kar ब्रजवासियों से मांग रहे कि मुझे भी कृष्ण के लीला में प्रवेश मिल सके है। तो कृष्ण की संग नारायण की संग के लिए लक्ष्मी जी भी लालसा करती है, और नारायण से जब दूर रहती है वो कुछ नहीं है, वो अगर वो कुछ नहीं है उसको पकड़कर अपने पास रखने वाले वो कैसे कुछ हो सकते हैं, ये प्रभा जी की प्रश्न है। अगर कोई दुखी व्यक्ति है, बहुत बड़ा दुखी है, डिप्रेशन है किसी के अंदर बहुत, आप उसके पास जाकर बात करो आपको भी डिप्रेशन आ जाएगा, है ना। तो लक्ष्मी जी भगवान से जब दूर रहती है तभी चिंता मग्न है, उसको चंचला बोला गया है। चंचला का मतलब क्या है, वो एक स्थान में नहीं रहती है, एक पॉकेट में दूसरे पॉकेट जंप करती है, जंप मारती रहती है, क्योंकि वो भी सुख की खोज में है। ऐसे मैं कलकत्ता मंदिर में था, हमारे सार्वभौम प्रभु आए थे उधर, तो एक प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हम लोग जीवन में सबसे ज्यादा जो पसंद है उसको हम किधर रखते हैं, दिल में रखते हैं, इसलिए हमारा पॉकेट को हमने दिल के पास बनाया है, ऐसे बोला उन्होंने। और उस पॉकेट में हमें जो सबसे ज्यादा पसंद है उसको हम रखते हैं, सबसे ज्यादा पसंद क्या है, लक्ष्मी है, इसलिए लक्ष्मी को पॉकेट में रखते हैं, ऐसे बोला उन्होंने। और उन्होंने बोला कि देखो इस दुनिया में अगर हम बोलते हैं कि भगवान को हम बहुत प्रेम करते हैं, भगवान बहुत पसंद है, तो दो दिल चाहता है हमें जो जिसको हम जब से ज़्यादा पसंद करते हैं उसको हमें भगवान को दे देना चाहिए, उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। इस तरह बोलकर अपने पॉकेट में ढूंढा उन्होंने, 2000 रुपया था, एक भक्त को दे दिया, बोला कि हुंडी में डाल दो अभी, तरह उन्होंने हुंडी में डाल दिया उन्होंने। ऐसे हम कलकत्ता में थे अभी, तो वो ऐसे बता रहे थे, प्रभा जी बता रहे हैं इधर। तो लक्ष्मी को पकड़ कर जो रखना चाहते हैं अपने पास, जैसे रावण ने रखा, वो लोग कभी कुछ नहीं हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण दोनों को जो उपासना करते हैं वही कुछ हो सकते हैं। इस तरह देवहूति ने बोला कि ये शिष्य जो होता है उसको गुरु से मांगना नहीं चाहिए कि मेरा लक्ष्मी बढ़ जाए, मुझे बड़ा मकान मिल जाए, मुझे कार मिल जाए, मुझे सुख सुविधा मिल जाए, ऐसा ना मांगे शिष्य, तो क्या मांगना चाहिए गुरु से, तो गुरु कृष्ण प्रेम देने के लिए योग्य हैं, उनसे वो मांगना चाहिए और मैंने नहीं मांगा, इस तरह बोलकर वो उन्होंने बहुत अफसोस की देवहूति ने। इस तरह हमें धोखा खाई है मेरे जीवन में, इस तरह हमें उनसे सही चीज़ नहीं मांगी, ऐसे वो बताती है। तो उसके बाद वो बताती है तीन चार बहुत महत्वपूर्ण शब्द बताती है, जब वो अपने अपने गुरु कपिल भगवान को मिलती है, वो बताती है निर्विण्णानितरां भूमन असद इंद्रिय तर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांदम तम प्रभु। वो बताती है हे भगवान, मेरे इंद्रिय हमेशा विचलित हैं इस दुनिया में, इंद्रिय भी विचलित है, मन भी विचलित है, यह दुनिया का हाल है, क्योंकि जैसे कोई खाने का पदार्थ है, प्रसाद भी हो, बहुत अच्छा ऐश्वर्यशाली पदार्थ है, तो लोग देखते हैं अभी एक तरह का जिह्वा का लोभ आ जाता है, थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं और उसके बाद अपच की समस्या होता है ना, इस तरह। तो ये इंद्रियों का असद इंद्रिय तर्शनात ऐसे बोलते हैं, इस तरह पुरुष स्त्री को देखता है, स्त्री पुरुष को देखते हैं, एक दूसरे से आकर्षण आ जाता है, वो आकर्षण से। लेकिन वो आकर्षण का नतीजा क्या है, भविष्य में दुख, दुखों का आदान प्रदान होता है इस दुनिया में। इसलिए उन्होंने बोला कि असत इंद्रिय तर्शनात, हे भगवान मेरे इंद्रिय जो है ये असत इंद्रिय है। क्यों असत है? असत का मतलब है जो ऐसे चीजों को पकड़ता है जो दुखदायक चीजें हैं उनको पकड़ता है। जैसे बच्चा जो होता है कभी कभी किचन में वो चक्कू को पकड़ता है हाथ में, नहीं तो आग को छूता है, वो गलत चीजों को पकड़ता है, उससे वो उसको खतरा पहुंचता है उसको, है ना। इस तरह बद्ध जीव भी क्या करते हैं, गलत चीजों में फंस जाते हैं। वो बोला कि इस तरह इसलिए असद इंद्रियों के कारण मैं बहुत दुखी हूं, ये मेरे मन की चंचलता का कारण है, ऐसे बोला उन्होंने। तो हम हर एक इंद्रिय हमें दुख पहुंचाते हैं, हम जिह्वा से कुछ बोलते हैं उसके कारण हमें दुख पहुंचता है, हम हाथ पैर से काम कुछ करते हैं, इस तरह हम देखते हैं कि असद इंद्रिय तर्शनात। तो प्रभुज बताते हैं कि सत इंद्रिय है उनके ऊपर असत इंद्रिय है। सत इंद्रिय किसमें है? आत्मा है, आत्मा में है। आत्मा का भी आंख है, आत्मा का भी चेहरा है, हाथ है, पैर है, आत्मा का भी सुंदर स्वरूप है। लेकिन उसके ऊपर क्या है, ये शरीर जो है ये ब्लैंकेट के समान है, जैसे हम रात को सोते में एक ब्लैंकेट डालते हैं ऊपर, ऐसे ही ये ब्लैंकेट के समान है। ये ब्लैंकेट के ऊपर जो भी इंद्रिय है, आंख है, कान है, जो ये सब चीजें हैं, ये असद इंद्रिय है। कि क्यों असद इंद्रिय है? इनके अंदर अशुद्धता है और अशुद्धता के कारण ये अशुद्ध चीजों को पकड़ते हैं, जिसके कारण ये दुख भोगते हैं, ऐसे बोला उन्होंने। इसलिए उन्होंने बोला कि लेकिन हे भगवान आप अगले श्लोक में बोलते हैं निर्विण्णा नितरां भूमन असत इंद्रिय तर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नानंदं तम प्रभो तस्यत्वं तमसोन्दस्य दुष्पारस्याद्यपारगम सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। उन्होंने बताया कि हे भगवान आप एक नाव के समान हो, नाव इस दुनिया में जैसे एक किनारे से दूसरा किनारा हम पार कर सकते हैं, इस तरह आपके आश्रय लेकर मैं ये भौतिक दुनिया से मैं भगवत धाम जा सकती हूँ, इस तरह उनको पारगम करके बुलाया। सच्चक्षु और आपने दिव्य आंखें दिया है मुझे, इस तरह उनको धन्यवाद दिए उन्होंने, दिव्य आंखों के साथ मैं भगवान को देख सकती हूँ ऐसे। और भी उन्होंने एक शब्द बताया स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, ये संसार रूपी पेड़ जो है बरगद का पेड़ है, ये सीधा पेड़ नहीं है, ये उल्टा पेड़ है, क्योंकि सीधा पेड़ भगवत धाम में है, लेकिन ये प्रतिबिंब पेड़ है इस दुनिया में, वो प्रतिबिंब पेड़ को काट कर भगवत धाम जाने के लिए आप मुझे दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे बताया देवगति ने। जिस तरह देवगति शरण गई, ऐसे ही जो इंसान इस दुनिया के दुखों से ऊपर उठना चाहता है, उसको भगवान की दिव्य ज्ञान को अपनाना बहुत आवश्यक है। देखिए ये भगवान की दिव्य ज्ञान जो है, इसको कैसे हमें अपनाना है वो समझना भी बहुत आवश्यक है। ये चैतन्य महाप्रभु को एक श्लोक बहुत पसंद था ब्रह्मा जी के प्रार्थनाओं में से, ये श्लोक अक्सर बोलते थे वो अपने भक्तों के साथ बात करते समय, वो बताते हैं ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमंत एव। एक व्यक्ति को अपने दिमाग को लगाकर मनोधर्म के द्वारा भगवान को जानने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, ऐसे बताते हैं। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य बोलते हैं, तो भगवान भगवान को तब हम समझ सकते हैं जब हम आचार्यों से सुनते हैं, इसलिए बताते हैं कि ज्ञाने प्रयास मुदपास्य, ब्रह्मा जी बताते हैं श्लोक, तो कल्पना मत करो भगवान के बारे में, लेकिन आचार्यों से सुनो। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंति संत मुखरिथम भवदीय वार्ता। संतों से आचार्यों से उनके मुखों से तुम ये बात को सुनो। जीवंती बोला गया है, आपको मालूम है इसका मतलब क्या है जीवंती? अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में कुछ भी काम नहीं करता है लेकिन सिर्फ भगवान का कथा सुनता है और भगवान का नाम लेता है, वो व्यक्ति को बोला गया जीवंती। ऐसे व्यक्ति भी भगवत धाम चला जाएगा बोला गया। अगर अगर कोई आलसी भी हो अगर लेकिन भगवान का कथा सुनता है, नाम लेने में दो चीजों में उसको रुचि है, वो बड़ा महान व्यक्ति माना जाता है वो। वो भी भगवत धाम जा सकता है। इसे इसका मतलब नहीं कि हम सब लोग आलसी बन जाए, लेकिन बोलने का मतलब क्या है, अगर कर्म करना है और भगवत कथा सुनना है, दोनों में से श्रेष्ठ चीज क्या है, भगवत कथा सुनना बहुत आवश्यक है। अगर कोई नेकता से ईमानदारी से काम भी करता है दुनिया में, अपने स्वधर्म को पालन करता है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो उसको भगवत धाम प्राप्त नहीं होता है, उसको शायद स्वर्ग प्राप्त होता है उसको। तो इसलिए बताते हैं कि जीवन तुम्हारे जीवन ऐसे जियो कि भगवान की कथा सुनने के लिए और भगवान के नाम जपने के लिए कभी भी कुछ बाधा न आ जाए उसमें, ऐसे बताते हैं। जीवंत शांत मुखरितम भवदीय वार्ताम, भवदीय मीन आपके, वार्ताम आपके संबंध में, भगवान कृष्ण के संबंध में बताते हैं। स्थाने स्थित, तुम जिस अवस्था में हो उधर ही तुम स्थित रहो। तुम गृहस्थ हो गृहस्थ रहो ऐसे, अगर तुम आर्टिस्ट हो पेंटर हो जो भी हो इंजीनियर हो डॉक्टर हो, उस स्थान में तुम स्थित रहो ऐसे बताते हैं। स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोवीर, देखिए विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर जीव गोस्वामी ये दो ये तीन शब्दों को बहुत सुंदर मतलब बताया उन्होंने। स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनु वान मनोवीर, एक भक्त तनु का मतलब अपने शरीर से कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता है, वो भगवान के शिव विग्रह की पांव को छू सकता है वो, और भगवान के शिव विग्रह के अलंकार कर सकता है, इस तरह भगवान को छू सकता है वो, ऐसे बताते हैं जीव गोस्वामी। तनु वाक, वाक से वो क्या कर सकता है, भगवान को पुकार सकता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे बताते हैं। और मन में भगवान के सुंदर राधा कुंजबहरी के सुंदर स्वरूप का स्मरण कर सकता है अपने मन में, ये तीन चीजें भक्त कर सकता है। और अभक्त क्या नहीं कर सकता है वो जीव को समय बताते हैं। वो बताते हैं कि अपने शारीरिक बल से, अपने वाक शक्ति से, अपने मानसिक वाक्पटुता से नहीं तो मानसिक शक्ति से एक अभक्त जो है भगवान को पकड़ नहीं सकता है, ऐसे बताते हैं। और इस तरह बताया गया है जितोपि अजितोपि, ऐसे बताया गया अजित भगवान को जीत सकता है कोई व्यक्ति, कैसे अजित भगवान को हम जीत सकते हैं, वो बताते हैं कि यही तीन चीज बताते हैं। भगवान क्या करते हैं, अपने शरीर जो भगवत धाम में भक्तों के पास में भगवान रहते हैं, अपने पास में भगवान भक्तों को रखना चाहते हैं, जैसे गरुड़ जी हैं वो विष्णु के पास रहते हैं, हनुमान जी हैं वो राम के पास रहते हैं, ऐसे नंद सुनंद विष्णु के दोनों बाज में है ऐसे, और कृष्ण के पास श्रीदामा सुदामा मधुमंगल है, राधा रानी जी है, ललिता विशाखा है, भगवान अपने भक्तों को अपने पास में रखते हैं। तो इस तरह भगवान को जब हम जीतते हैं भगवान की सान्निध्यता प्राप्त होता है हमें, ऐसे बताते हैं। और वाणी से भगवान क्या करते हैं, भक्तों का गुणगान करते रहते हैं हमेशा हमेशा। और मन से क्या करते हैं, भगवान अपने मन के अंदर अपने भक्तों को रखते हैं और सदा भक्तों का स्मरण करते हैं भगवान, ऐसे बताते हैं। भगवान के शरीर से वाणी से अपने भक्तों का गुणगान करते हैं और अपने मन के अंदर अपने भक्तों का स्मरण करते हैं भगवान, और सोचते हैं कि देखो ये मेरा भक्त कैसे सेवा कर रही है कर रहा है, ऐसे जल्दी जल्द मैं भगवत धाम में उनको ले लूँ, इस तरह वो सोचते हैं भगवान। तो लेकिन अगर हमें भगवान को ऐसे पकड़ना है, भगवान को प्राप्त करना है, जीतना है भगवान को, तो भगवान की प्रेम जो है वो हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि का पराकाष्ठा लक्ष्य होना चाहिए हमें। नहीं तो इस भौतिक दुनिया के पराक्रमता से विजय से जो हम प्राप्त करते हैं उससे कुछ साथ में नहीं जाने वाला है। इसलिए प्रभु ने बोला कि यह भौतिक दुनिया के सब प्राप्तियां जो है वो एक स्वप्न के समान है, वो जब स्वप्न टूटता है भक्त को तभी वो भगवत धाम में रहेगा। लेकिन भगवत धाम में जो लोग नहीं गए हैं वो एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाते हैं, वो जन्म की बाद एक जन्म ऐसे वो घूमते हैं ऐसे बताया। तो भगवान अपने बारे में समझाते हैं भगवत गीता में, बहुत सुंदर वर्णन है भगवत गीता के संबंध में विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर बताते हैं। ये भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान का शब्द जो है वो वाक वधु बताते हैं, वाह वधु का बोलते हैं। वाह वधु का मतलब क्या है, वो अमृत वाणी के समान है, भगवान का शब्द अमृत वर्षा के समान है। और भगवान को सत्य संकल्प बोला गया है, जिसका मतलब है उनके वचन कभी भी झूठ नहीं होता है भगवान के, ये दो चीज बताते हैं। इसलिए हमें कैसे इसको स्वीकारना चाहिए, ये ग्रंथों को नमंत एव बोलते हैं। नमंत का मतलब है हमारे हाथ के साथ पैर के साथ दोनों को झुक कर, जिस तरह हम दंडवत प्रणाम करते हैं किसी को भी, इस तरह झुक कर इन ग्रंथों को हमें सुनना चाहिए, भगवद गीता को, भागवत को ऐसे सुनना चाहिए, ऐसे विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं। और इस तरह की मर्यादा के साथ, इस तरह के आदर के साथ, प्रेम के साथ हम भगवान के आदेशों को, वचनों को जब हम सुनते हैं, तभी धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रेम जागृत होगा, ऐसे आशीर्वाद दिया गया है। तो हम क्यों हम नया मंदिर बना रहे हैं, इसके मैंने आपको कारण बताया था कि मानवता के ऊपर प्रेम और भगवान के ऊपर प्रेम के बारे में बता रहा था, ये कारण बता रहा था मैं। और एक कारण मेरे मन में उदय हुआ कल हम जब सोच रहे थे इसके बारे में। देखिए भगवान जो होते हैं वो इतने नम्र होते हैं, वो तो नम्रता का मूर्तिमान स्वरूप है भगवान। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति आप रचति, मुझे आप क्या दे दो, एक पत्ता दे दो, तुलसी का पत्ता है, और थोड़ा पानी दे दो, फल दो और फूल दो, बस दूसरा कुछ मुझे नहीं चाहिए। अगर कोई करोड़पति आदमी बोलेगा ठीक है भगवान इतना ही चाहिए आपको, ठीक है इधर एक तुलसी का पत्ता ले लो, एक ग्लास पानी है ले लो, बस हो गया, आपने इतना ही मांगा मैंने दे दिया, ऐसे अगर कोई बोलेगा वो कपटी व्यक्ति है। क्यों, भगवान ये नहीं देखते हैं कि हम कितना देते हैं भगवान को, हम कितना रखते हैं हमारे पास, वो देखते हैं भगवान। तुम्हारे पर्स को निकाल कर कितना दिया मुझे, वो नहीं देखेंगे भगवान। क्या देखेंगे, तुम्हारे पर्स के अंदर कितना है बाकी, वो देखेंगे भगवान। कभी कभी लोग आते हैं मंदिर में, बड़ा करोड़पति बड़े कार में आते हैं, तो मंदिर में आकर अपने पर्स निकाल कर 1 रुपया डालते हैं अंदर, लगा चले जाते हैं इसे। तो भगवान तो कड़े हैं, देख रहे हैं भगवान कौन व्यक्ति क्या कर रहा है ना। इसलिए हालांकि भगवान बताते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तो दे दो, बस दूसरा कुछ मुझे नहीं चाहिए, फिर भी भक्त लोग क्या सोचते हैं, भक्त लोग सोचते हैं कि ये तो भगवान कितने महान व्यक्ति हैं। देखिए भगवान की महानता जानना भी बहुत आवश्यक है। भगवान की महानता क्या है, अद्भुतता क्या है, ये दुनिया के हर अणु अणु में भगवान बसे हुए हैं, और हर जीव के बाजू में भगवान खड़े हैं, उनके हृदय में उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं भगवान। और ऐसा नहीं कि भगवान इस दुनिया के अंदर आ गए बंदे गए, ऐसा नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति, कोई चोर है, उसको जेल में डाला जाता है तो बंधा जाता है जेल में, है ना। लेकिन भगवान ऐसे बंधे नहीं है, वो कैसे हैं, जैसे कंठीमाला के अंदर एक नायलॉन है, उसके समान है भगवान। सूत्र मणिगणाई वह भगवान बताते हैं, ये सूत्र के बिना ये मणियां अपने अपने स्थान में नहीं रह सकते हैं, ये सूत्र को निकालो सब मणि बिखर जाएगा ऐसे। इस तरह भगवान को निकालो दुनिया से, सब दुनिया बिखर जाएगा, कुछ चलेगा नहीं दुनिया। ऐसे भगवान क्या है, भगवान इस दुनिया के हर चीज में बसे हैं। भगवान बताते हैं कि मैं पानी का रस हूं, ये हर एक तरकारी जो होता है, फल फूल होता है, इसमें जो रस है वो मैं हूं, भगवान बताते हैं। सूर्य का आभा वो भी मैं हूं, चंद्रमा की जो रोशनी है वो भी मैं हूं, भगवान बताते हैं। सब कुछ चीज मैं ही हूं, भगवान बताते हैं इस दुनिया में। तो ऐसे भगवान बसे हैं, तो भगवद गीता के द्वारा हमें ये समझना चाहिए भगवान को। और इस दुनिया की सृष्टि में करता हूं, इस दुनिया के नाश में करता हूं, और सब जीवों को नाश के बाद भी मेरे नाभि में मैं रखता हूं विष्णु के रूप में, और दूसरी दुनिया जब सृष्टि करता हूं तभी उनको वापस छोड़ता हूं। तो ये सब भगवान महान चीजों को करते हैं। देखिए एक व्यक्ति की महानता के बारे में जब हम सुनते हैं हमारे हृदय में क्या उदय होता है, एक तरह का आदर होता है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि इतना ही नहीं, लेकिन मैं जीवों को इतना प्रेम करता हूँ इस दुनिया में, वो बताते हैं कि मैं एक इतना करुणा भावना है मुझे जीवों की ओर, इसलिए मैं अवतरित होता हूँ इस दुनिया में। भगवान को इस दुनिया में आने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं अवतरित होता हूँ। जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के बीच में भगवान खड़े थे करोड़ों सैनिकों के सामने, हे विष्णु चक्र ठाकुर बताते हैं भगवान की करुणा है, सबको दर्शन दिया भगवान ने ऐसे ऐसे। तो भगवान किस लिए आते हैं, हमारे ऊपर करुणा है इसलिए भगवान आते हैं इस दुनिया में, आकर भगवद्गीता दिया है, भागवत दिया है इस तरह। तो ये जीवात्मा का ये कर्तव्य है कि इतने महान भगवान हैं, इतने करुणामय भगवान हैं, उनको मुझे सेवा करना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने बताया भगवान पत्र पुष्प मांगते हैं, लेकिन हमें और भी देना चाहिए। एक बार एक दिन अद्वित आचार्य ने बुलाया था भगवान चैतन्य महाप्रभु को उनके घर में, आ जाइए मेरे घर में, मैं प्रसाद परोसना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने ये भी प्रार्थना की, भगवान को प्रार्थना की उन्होंने, महाप्रभु मेरे घर में आने के बाद जोरदार बारिश हो जाए। कारण क्या है, अगर बारिश हो जाएगा तो दूसरे सन्यासी नहीं आएंगे, सिर्फ महाप्रभु आएंगे। तो उनकी इच्छा थी कि महाप्रभु को बहुत अच्छा प्रसाद परोसना चाहिए, अकेले उनको बिठाकर प्रसाद परोसना चाहिए, ऐसी इच्छा थी उनको। तो महाप्रभु आ गए और बहुत जोरदार बारिश भी होने लगा बाहर। तो महाप्रभु ने मांगा, उनको बोला कि मैं तो सन्यासी हूँ, आप मुझे दे दो कुछ उबाला हुआ सब्जी दे दो, बस दूसरा कुछ मुझे नहीं चाहिए। अद्वैत ने बोला ठीक है मैं दे दूंगा। तो उनको अंदर लेके जाकर बिठाया, ये एक बहुत बड़े पत्ता, ये केले के पत्ते के सामने। महाप्रभु ने देखा कि इतना तरह तरह के व्यंजन रखा गया था उधर, 56 भोग रखा गया था उधर। तो महाप्रभु बोला इतना खिलाओगे तो मैं कैसे खाऊंगा, इतना मेरे अंदर कैसे शक्ति है खाने के लिए। तो अद्वैत आचार्य ने बोला कि देखो महाप्रभु, आप तो जगन्नाथ के रूप में 56 भोग खाते हो, आप ये क्यों नहीं खा सकते हो, आपको लेना ही पड़ेगा आपको। इस तरह बोलकर वो प्रसाद ऐसे परोसने लगे। जब मैं लीला को सुना, मुझे लगा कि देखो भगवान मांगेंगे नहीं है हमसे, लेकिन हमें देना हमारा कर्तव्य है। भगवान बोलेंगे मुझे उबाला हुआ सब्जी दो, लेकिन हमें क्या देना चाहिए, उनको ऐसे परोसना चाहिए भगवान को। आप देखेंगे ऐसे ही भगवान की जो महान भक्त होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। एक रानी थी, वो जयपुर की राजा का बेटी थी। वो वृंदावन में, आपको मालूम है मुगल लोगों के समय में बहुत माहौल लोग सताते थे, इसके कारण मदन मोहन जी को उधर से लेके जाकर उधर जयपुर में रखा गया था। तो वो राजा की बेटी भगवान को इतने अच्छी तरह उन्होंने सेवा की, भगवान को इतना प्रेम से सेवा की, बचपन से छोटी उम्र से उसने सेवा की। जब वो बड़ी हो गई, उसकी शादी का उम्र आ गया, तो करौली नाम के स्थान के राजा का जो बेटा जो है राजकुमार, उसके साथ इसकी शादी होने वाली थी। सब बात वगैरह हो गया, तो शादी के समय जो बहू जो होती है, उसके रिश्तेदार सब साथ में एक जुलूस के रूप में जाते हैं इससे दूसरे इसमें। लेकिन ये स्त्री बताई, राजकुमारी ने बताया कि मैं शादी वादी नहीं चाहती, मैं शादी नहीं करूँ, क्योंकि मैं इधर ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो मदन मोहन जी हैं वो मेरे प्राणनाथ हैं, उनकी सेवा करनी चाहती हूँ, मैं इधर ही रहूँगी, मैं उनके ससुराल बोलते हैं ना, ससुराल में नहीं जाऊँगी मैं। इस तरह वो हट करने लगी, रोने लगी वो। अभी दोनों पिताजी, वो लड़के का भी पिताजी, लड़की का भी, दोनों वो चिंता मग्न हो गए, अभी क्या किया जाए, अभी नहीं जाएगी तो शादी कैसे होगा, ऐसे सोच रहे थे। शादी का सब एंगेजमेंट वगैरह हो गया था पूरा। तो फिर राजा ने बोला कि ठीक है, मदन मोहन जी के लिए हम करौली में एक सुंदर मंदिर बांधेंगे, और इसके साथ साथ ये राजकुमार के साथ साथ मदन मोहन जी भी जाएंगे एक बड़े जुलूस में। इस तरह बोलकर उन्होंने आयोजन की। तो मदन मोहन जी को एक बहुत बड़े सुंदर प्रोसेशन में लेके गया। तो उनको इतना अच्छी तरह सजा कर फूलों का वर्षा करके लेके गया। इतना अच्छा हुआ वो उत्सव कि ये राजकुमारी जो है वो तो एक सेविका के रूप में रहकर मदन मोहन जी की पूजा करते हुए वो गई उसमें, और उधर जाने के बाद वो जो रहती थी और उधर उनकी पूजा भी कंटिन्यू किया उन्होंने ऐसे। तो हम देखते हैं कि इतने उदाहरण हम दे सकते हैं कि लोग कैसे भगवान की जब उपासना आता है, भगवान के भक्त लोग बहुत खुशी से प्रेम से अपने प्राण भी देकर उनकी सेवा करते हैं, ऐसा है। एक बार भक्तचार्य स्वामी आए थे पुणे में, वो बता रहे थे कि भगवद गीता भगवान बोलते हैं कृष्ण अपने भक्त अर्जुन को, इसलिए अर्जुन को बोलते समय भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन तुम्हारे ही हृदय में परमात्मा खड़ा है, तम ये शरणम गच, उसका शरण जाओ तुम, ऐसे बोलते हैं। तो हमें प्रश्न उठ सकता है कि अरे सामने सामने भगवान खड़े हैं, अर्जुन को तो बोल सकते हैं कि मेरा शरण आओ, वो क्यों बोलते हैं तम एव शरणम गच, उसका शरण में जाओ। तो बक्सा स्वामी बता रहे थे कि कभी कभी भगवान बोलते हैं माम एकम शरणम रजा, लेकिन बार बार बोलने में उनको संकोच होता है। अरे कितने बार हम बोल सकते हैं, एक बार बोला, दो बार बोला, बहुत हो गया अभी, अगर बार बार मैं बोलूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं गर्व करता हूँ। इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हारे हृदय में परमात्मा है उसका शरण जाओ, तम एव शरणम गच, ऐसे भगवान बोलते हैं, क्योंकि वो भी मेरा ही विस्तृत स्वरूप है वो परमात्मा भी। तो भगवान अपने बारे में ज्यादा बोलते नहीं भगवद गीता में, क्योंकि संकोच के कारण वो क्या करते हैं, सिद्धांत बोलते हैं बहुत है? आत्मा क्या है और ये जन्म मृत्यु क्या है, भगवत धाम क्या है, बताते हैं, अपने बारे में थोड़ा बहुत बोलते हैं भगवान। लेकिन भागवत में आप देखेंगे भगवान के बारे में इतना वर्णन है, कारण क्या है, उधर भक्त लोग भगवान के गुणगान करते हैं, इसलिए बहुत बड़ा वर्णन है भागवत में। जैसे अगर आप किसी की व्यक्ति के पास पूछो तुम्हारा योग्यता क्या है, तुमने क्या किया है, बोलेगा मैं इंजीनियर हूँ। ठीक है, इंजीनियरिंग किधर किया तुमने, बोला ठीक है मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में किया। ठीक है, किस कॉलेज में किया तुमने, ठीक है मैं IIT में किया, बोलेगा ठीक है। उसके बाद तुमने क्या किया, ठीक है मैंने डॉक्टरेट किया। हो डॉक्टरेट भी किया तुमने, अरे डॉक्टरेट किधर किया, तो मैं अमेरिका में ओहियो स्टेट में किया। अरे अमेरिका गए तुम, ओहियो स्टेट में किया, बड़ी बात बोला नहीं तुमने। ऐसे एक व्यक्ति के मुख से निकालने के लिए आपको बहुत समय लगेगा, है ना। लेकिन आप उसके माँ बाप के पास जाकर पूछो आपके बेटा है उसका क्या योग्यता है, वो लंबा कथा बता देंगे आपको, है पूरे पूरा बोल देंगे, हमारा बेटा IIT में पढ़ा, उसके बाद अमेरिका गया, ओहियो स्टेट किया, इसने ये किया है, वो क्या, उसको ये मेडल मिला है, वो मेडल मिला है, सब बोल देंगे आप। इस तरह भगवान के भक्त भी भगवान के बारे में बोलना होता है तो वो लंबा लंबा लेक्चर दे देते हैं, कभी 4 घंटा 5 घंटे का लेक्चर देते हैं, वो बोलेंगे भगवान के बारे में, लेकिन खुद के बारे में वो बोलेंगे नहीं कभी। इस तरह भगवान जो होते हैं अपने बारे में वो ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन भक्तों का कर्तव्य है कि भगवान की गुणगान करें, भगवान के नाम ले, भगवान की गुणगान करें। ऐसे इस तरह हम जो मंदिर बना रहे हैं, मंदिर हम क्यों बनाते हैं, भगवान क्या, भगवान की ज़रूरत है इस तरह का मंदिर बनाने की, बहुत बड़ा मंदिर बनाने की। प्रभुपाद ने बोला एक कुछ नए लोग आए थे उनको मिलने के लिए, प्रभुपाद बोला देखो हम भी बड़े बड़े कार में जाते हैं, हमारे पास भी बड़ा मकान है इधर, हम भी बहुत पैसा खर्चा करते हैं, हम लोग भी ये सब चीज़ करते हैं, तो आप लोग इसको देखकर सोच सकते हो कि अरे इसमें और हमारे जीवन जीने में क्या फ़र्क है, दोनों एक ही समान है, आप सोच सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। प्रभुपाद ने बोला देखो मैं एक आसन में बैठा हूँ और मेरे साथ साथ एक कटमल भी बैठा है इस आसन में, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ और कटमल जो काम कर रहा है दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भगवद गीता भागवत को पढ़कर लोगों को सुना रहा हूँ और हम सब लोग उद्धार हमारा उद्धार हो जाएगा और भगवद धाम चले जाएंगे, लेकिन कटमल क्या करता है, वो काटता है वो, और दूसरा कुछ काम नहीं करेगा वो, लेकिन दोनों एक ही आसन में बैठे हैं, ऐसे बोला उन्होंने। इस तरह एक भौतिक व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति दोनों इस दुनिया में बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन भक्त किस लिए काम कर रहा है, भगवान के लिए काम कर रहा है। जैसे प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे, साधु थे, लेकिन दिल्ली में जाकर वो किताबों को छापने के लिए जाते थे। तो एक दिन ऐसे अपने सर के ऊपर प्रिंटिंग प्रेस में से पेपर खरीद कर लेके जा रहे थे प्रभुपाद जी अपने सर के ऊपर, तो कुछ लोग उनको आश्चर्य के साथ देखा, आश्चर्य की आंखों से, क्या है ये स्वामी जी ने संन्यास ले लिया, ये तो स्वामी जी साधु हैं, इनको इस तरह पेपर अपने सर के ऊपर लेके जाने की क्या ज़रूरत है, किताब छापना, पैसा कमाना, इस तरह पेपर लेके जाना, ये सब काम क्यों कर रहे हैं ये आदमी, ऐसे सोच रहे थे लोग। तो उनको देख कर प्रभुपाद ने एक आर्टिकल लिखा बैक टू गॉडहेड में, उन्होंने लिखा देखो लोग सोचते हैं कि हमारे जैसे ही आदमी काम कर रहा है, लेकिन आदमी किस लिए काम कर रहा है, ये भगवान की किताब छापने के लिए काम कर रहा है, और जो पैसा आता है उसको भी भगवान के ही सेवा में लगा रहा है, अपने प्राण अपने तन मन धन सब इस्तेमाल कर रहा है इसे, तो ये फर्क है, ये प्रभुपाद ने समझाया इसे। तो तो उन्होंने बोला कि ये दुनिया में रहते समय हमें आसक्त नहीं हो जाना चाहिए, अनासक्त होकर सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस तरह हम मंदिर बांध रहे हैं, बड़ा मंदिर है, ये भगवान की खुशी के लिए और भगवान की यश को ज्यादा फैलाने के लिए है। इसलिए छोटा मंदिर में कम लोग आएंगे, बड़े मंदिर में बहुत लोग आएंगे है। तो भगवान की नाम सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे है, भगवान की यश सुनेंगे, भगवान के और गुणगान होगा है। और भगवान की, जैसे पांच चीज प्रभु ने बोला, भगवान की प्रसाद, भगवान की वाणी है, भगवान की दर्शन, भगवान की कृपा सब प्राप्त होता है लोगों का इसे। तो ये तो उतना बड़ी बात नहीं है बोलने के लिए कि हमें अनासक्त होना चाहिए है। लेकिन हमें वैष्णव सिद्धांत जो है वो सही ढंग से समझना बहुत आवश्यक है। हम इस तरह के बहुत बड़े पैसा को कलेक्ट करके, बड़े मंदिर बांध कर ये सेवा जो हम करना चाहते हैं, उसके लिए ये वैष्णव सिद्धांत जो उसका बुनियाद जो है वो समझना बहुत आवश्यक है। हमारे वैष्णव सिद्धांत का फाउंडेशन क्या है, ये समझना कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ मेरे जीवन में है, किसी भी तरह की सेवा मुझे दिया गया है, जो भी पदवी दिया गया है, लेकिन मेरा अस्तित्व क्या है, मैं एक सेवक हूँ। वॉट एवर सर्विसेस आई मे डू, वॉट एवर पोजिशन आई मे होल्ड, वॉट एवर नेम एंड फेम एंड इन्फ्लुएंस आई मे हैव, ऑल दिस थिंग बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स आई एम आफ्टर ऑल ओनली अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड द डिवोटीज। ये बहुत आवश्यक है, क्यों, क्योंकि हमारे लक्ष्य को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं गुरु और कृष्ण को मैं सेवा करना चाहता हूँ, बस यही मेरा एकमात्र इच्छा है, दूसरा नहीं। ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति नाम यश और प्रेस्टीज ये सब कमाना चाहते हैं, वो लोगों को यही समस्या होगा, सदा समुद्विग्न धियाम असद गृहात, ऐसे बताते हैं प्रभुपाद जी, सदा समुद्विग्न धियाम असद गृहात, वो हमेशा वो चिंता में, वो चिंता मग्न वो रहेंगे। देखिए पृथु और इंद्र के कथा में आता है कि पृथु महाराज उन्होंने भगवान के लिए यज्ञ किया, उन्होंने वो जन कल्याण के लिए और भगवान की खुशी के लिए उन्होंने यज्ञ की, लेकिन इंद्र ने अपने अस्तित्व को पकड़ कर रखने के लिए उनके साथ स्पर्धा किया उन्होंने। लेकिन हम देख सकते हैं इसका नतीजा क्या है, इंद्र बहुत डिस्टर्ब हो गया वो बहुत, और इस तरह का उन्होंने कंपटीशन किया, बहुत कंपटीशन किया उनके साथ, पृथु महाराज के साथ। और ये इंद्र और पृथु का उदाहरण हमने क्यों दिया, हम जब नवसिखी अवस्था में रहते हैं, हम भक्ति करते हैं, ये हम यही बात जो इंद्र के बारे में हम बोल रहे हैं वो हमारे जीवन में भी हो सकता है। तो ये नेम फेम ग्लोरी सेम ओल्ड स्टोरी बोला गया है। तो इसके कारण क्या है, मानसिक चिंता, मानसिक तनाव, ये बहुत बड़ा कारण है उसका। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा खतरा क्या है भक्त के लिए, मैं आपको बता रहा था ये एक्सीडेंट के बारे में बोल रहा था शुरुआत में है, वो भी एक तरह का खतरा है। कोई सर्प अगर काटेगा वो भी खतरा, अगर हम किसी गांव में जाते हैं, जंगल में जाते हैं तो हमें डरते हैं कि सर्प कोई काटेगा, वो भी खतरा है। अगर बहुत बड़े 10 माले के बिल्डिंग के ऊपर हमें गिर ना जाए, वो भी हमें डर होता है, ये सब खतरे हैं। लेकिन ये उतने बड़े खतरे नहीं है वैष्णव के लिए जितना दो खतरे हैं, क्या है वो, डिस्ट्रैक्शन एंड इन्फैचुएशन, दीज टू आर द ग्रेटेस्ट डेंजर्स फॉर अ डिवोटी। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, ये माया जो है अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग तरीके से वो काम करती है। कभी कभी माया क्या करती है, बूम करके मार देती है कोई व्यक्ति को, भक्ति छोड़कर चले जाते हैं वो है। और कुछ कुछ लोगों को माया धीरे धीरे काम करती है उनके जीवन में, धीरे 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 धीरे, जैसे ये जो चूहा काटता है धीरे धीरे, ऐसे माया क्या करती है उनके जीवन में धीरे 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 आती है। कैसे हम समझ सकते हैं माया हमारे जीवन में धीरे धीरे आती है, कोई कोई बोलते हैं कि मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं है मेरे पास, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं प्रॉपर किताबों को पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, और उस समय उसके बाद बोलेंगे प्रभु जी अभी हर संडे को मंदिर में आना मुश्किल है प्रभु जी, महीने में हम एक बार आते हैं ऐसे बोलेंगे, और उसके बाद बोलेंगे प्रभु जी अभी ये लगता है कि हम सिर्फ फेस्टिवल के दिन हम आ पाएंगे बस, बाकी समय नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद बोलेंगे कि अभी 16 माला सुबह सुबह करना पूरा कठिन है, हम सुबह 2 माला करते हैं, 14 माला रात को करते हैं, ऐसे धीरे धीरे करते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि आज 10 माला कर लिया, 6 माला कल करेंगे, ऐसे करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद बोलेंगे अगर मंदिर में जाएंगे तो पूछेंगे भक्त लोग, अच्छा है कि हम मंदिर ना जाए, हम घर में ही भक्ति करें, किसी के साथ झगड़ा कर ले और घर में ही भक्ति करें, इस तरह। और इस तरह धीरे धीरे क्या होता है, भक्त भक्ति से छूट जाता है और भक्ति बंद हो जाता है। कभी कभी किसी के घर में शिव विग्रह की स्थापना करते हैं, शुरुआत में तो बहुत उत्साह होता है, पति पत्नी दोनों स्पर्धा करते हैं, मैं भगवान की पूजा करूंगा ऐसे, और मैं भोग चढ़ाऊंगा वगैरह। और बाद में क्या हो जाता है, धीरे धीरे समय होता है, वो तो अपने छोटे बच्चों को लगा देते हैं, और उसके बाद पूजा भी नहीं करते हैं और भागवत भी नहीं पढ़ते हैं, जब भी भगवान के सामने नहीं करते हैं और साथ में नहीं करते हैं, अकेले अकेले कर लेते हैं सब लोग। इस तरह हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हम भक्ति में हम सुखापन महसूस कर सकते हैं। ये इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। डिस्ट्रैक्शन मीन्स क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन विचलित होना, इज इट डिस्ट्रैक्शन, करेक्ट, विचलित इज नॉट विचलित। दूसरा है इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन का मतलब है अहंकार, अहंकार के कारण हम अपराध कर बैठेंगे, वैष्णव अपराध करना है, यह अहंकार से उत्पन्न होता है। ये हर एक भक्त को कुछ ना कुछ सेवा दिया गया है, हम सब सेवा करते हैं भगवान की, लेकिन ये सेवा, ये जब हम सेवा अपनाते हैं, ये सेवा हम किस भावना के साथ करना चाहिए, ये परीक्षित से हम सीख सकते हैं। ये परीक्षित महाराज जो हैं वो सारे दुनिया का राजा थे, वो इतने हाथी घोड़े थे उनके पास, इतना यश नाम था उनके पास, लेकिन जब उनको शाप मिला कि 7 दिन में उनको शरीर त्यागना है, अभी 7 ही दिन में उनको प्राण त्यागना है, जब पता चला उनको, वो सब को छोड़कर गंगा के तट में चले गए, लेकिन प्रतिशाप उन्होंने नहीं दिया किसी को भी, जो ब्राह्मण ने उनको शाप दिया उन्होंने प्रतिशाप नहीं दी, उन्होंने स्वीकार कर लिया उस शाप को, और सब आसक्तियों को त्याग कर छोड़कर भगवान के आश्रय लेकर पूर्ण तरीके से प्रेम से वो आश्रय ले लिया ऐसे उन्होंने। इसका कारण क्या है, उन्होंने अपने पदवी को इस भावना के साथ स्वीकार किया उन्होंने कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान ने यह सब दिया है मुझे, स्वीकारूंगा इस पदवी को, भगवान ने ले लिया है उन्होंने छोड़ दिया उसको, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं भगवान का एक सेवक हूँ, ये चैतन्य महाप्रभु का फिलॉसफी है। भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, वानप्रस्थ नहीं हूँ, ये सब आवरण है मेरे ऊपर, लेकिन मैं भक्तों का दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ, ऐसे बताते हैं वो। तो ये आत्मा का एकमात्र आइडेंटिटी, व्हाट इज आइडेंटिटी, पहचान है, ये पहचान है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि नया मंदिर, जब नया मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, उधर इतना सुविधा रहेगा भक्तों के लिए, इतना अनेक भक्त लोग जुड़ जाएंगे, जैसे जुहू मंदिर में लगभग अभी 300-400 लोग काम कर रहे हैं मंदिर में, एम्प्लॉयज, उनको छोड़कर हजारों भक्त जुड़े हैं जो अलग अलग सेवा अपनाया है। इस तरह बड़े मंदिर में बहुत से सेवाएं होते हैं, अनेक काउंसलर्स रहेंगे, अनेक डिपार्टमेंट हेड रहेंगे, अनेक सेवाएं होगा हमें, और इन सेवाओं को हम अपनाते समय हम प्रार्थना करें कि भक्त आपस में झगड़ा ना करें, भक्त एक दूसरे से सहायता करते हुए भगवान की सेवा में वो जुड़े, इस तरह की भावना के साथ वो सेवा करें। और इस नया मंदिर की ऐशोराम जो है, जो बहुत बड़ा मंदिर है, सुविधा है, इसको हम दुरुपयोग ना करें, इसका हम सदुपयोग करें, क्योंकि भगवान की यश के लिए हम मंदिर बना रहे हैं, भगवान की खुशी के लिए, ये याद हमारे हृदय में हमेशा के लिए रहे, ये बहुत आवश्यक चीज़ है भक्तों के लिए, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला कि भक्त को बड़ा मंदिर हो नहीं तो पेड़ के नीचे हो, दोनों में फर्क नहीं है, दोनों एक ही है, प्रभुपाद ने बोला। अगर कुछ सुविधा नहीं है हमारे पास, हम एक पेड़ के नीचे बैठकर हम कीर्तन करेंगे। प्रभुपाद ने बोला ही नहीं, करके दिखाया उन्होंने। जब अमेरिका गए टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में भक्तों के साथ, वो पार्क में जब प्रभुपाद गए भक्तों के साथ, उधर कुछ स्त्री पुरुष बैठकर प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे, कुछ लोग गेंद खेल रहे थे, कुछ लोग वायलिन बजा रहे थे, कुछ बच्चे आवाज निकाल रहे थे ऐसे, अलग अलग लोग अलग अलग चीज कर रहे थे उधर पार्क में। तो प्रभुपाद बीच में जाकर बैठ गए नीचे, और प्रभुपाद के साथ जो शिष्य आए थे दीक्षित भक्त 12 भक्त थे, उनको बहुत संकोच हुआ, इधर उधर देखा, क्या है स्वामी जी क्या कर रहे हैं ऐसे, हमको इस तरह खुले खुले दुनिया के सामने लाया, हम तो पहले कमरे के अंदर करते थे कीर्तन, उधर कुछ संकोच नहीं, लेकिन इधर सबके सामने लाया है इधर, और स्वामी खुद बैठ गए ऐसे नीचे। तो उन्होंने इधर उधर देखकर वो भी बैठ गए नीचे ऐसे संकोच के साथ। तो प्रभुपाद शुरू किया, वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पद कमलम, ऐसे शुरू किया उन्होंने करताल के साथ। तो सब भक्त सुन रहे थे ऐसे, और ऐसे करते करते भीड़ आने लगा पास में, प्रभुपाद जितना अच्छा मधुर गाते थे ऐसे, और धीरे धीरे 60-70 लोग आ गए। तो हरे कृष्ण शुरू किया उन्होंने, तो हरे कृष्ण जब गाया करताल के साथ, उनके हाथ में मृदंग भी नहीं था उस टाइम, सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसको, बोंगो बोलते हैं हम, कोल बोलते हैं, छोटा कोल था, उसको बजा रहे थे प्रभुपाद जी, और अलग अलग भक्त करताल बजा रहे थे, और भक्त लोग कीर्तन करते 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 उनके हृदय में एक तरह का साहस आ गया, वो संकोच निकल गया वो कीर्तन करते करते भगवान का शरण लेने से। और सैकड़ों लोग आने लगे, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आकर वो बजाने लगे, और भक्त लोग इतने खुश हो गए, खड़े होकर नाचने लगे भक्त लोग। ये पहला हरिनाम था उधर टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में। जब प्रभुपाद वापस गए अपने कमरे में, उनके पीछे पीछे 20-25 लोग वापस आने लगे उधर से, और बैठकर प्रश्न पूछने लगे। ऐसे प्रचार शुरू किया प्रभुपाद जी ने, इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला ही नहीं, प्रभुपाद ने बोला कि हम बड़े मंदिर में भी प्रचार करेंगे, एक पेड़ के नीचे भी हम प्रचार करेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों चीज करने के लिए हम तैयार हैं, ऐसे बोला प्रभुपाद जी ने। ये चेतना रहना चाहिए भक्त की, भक्त को कभी भी भौतिक चीजों को पकड़ना नहीं चाहिए कभी, और उनसे पहचानना नहीं चाहिए हम जो भी हो। तो इस चेतना के साथ अगर हम भक्ति करते हैं, भक्ति देते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं दूसरे भक्तों को, ये आचार्यों के एक निमित्त बनकर, एक इंस्ट्रूमेंट बनकर उनके हाथ में, तभी ज़रूर भक्ति फैल सकता है बहुत बड़े मात्रा में। तो आज एक नया सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं फंड रेजिंग का, श्री गुरुचरण प्रभु, शैद्य प्रभु, राजशेखर प्रभु आकर आपको बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि अभी दिसंबर महीना जो आ रहा है, ये महीने में जिस तरह पिछले साल आप सब लोग साथ में आकर बहुत अच्छी तरह कलेक्शन की थी, इस तरह इस साल भी एक सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं। अगले हफ्ते हिज होलीनेस गोपालकृष्ण गोस्वामी महाराज आने वाले हैं, तो 29th को आने वाले हैं, महाराज भी कुछ सदुपदेश देंगे हमें इसके बारे में। और ये स्कीम जो है, ये बहुत स्पेशल स्कीम है और बहुत आसान स्कीम है लोगों को अप्रोच करने के लिए। पहले से जो हम करते थे उन स्कीमों में से सबसे बेस्ट स्कीम है, तो ये आपको समझाएंगे दोनों स्कीम के बारे में। श्री गुरुचरण प्रभु, शैद्य प्रभु, दे रहा राशवेगर प्रभु।